मुक्तो पिता वा विवृत्या स्वदेहां आरब्ध अस्नम अभिमान शून्य यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्न देहाय गुणान् वृङ्क्तये मुक्तो पिता विवृत्या स्वदेहाम् आरब्धमस्नम् अभिमानशून्यम् यथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्यदेहाय गुणान् वृत्तये माताजी मुक्तः मुक्त पुरुष अपि हि तावत् तब तक विभ्रियात धारण करना चाहिए स्वदेहम् अपना शरीर आरब्ध पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त अस्नन स्वीकार करते हुए अभिमान शून्य अभिमान रहित यथा जिस प्रकार अनुभूतम जैसा अनुभव किया गया हो प्रतियात निद्रा निद्रा से जगा हुआ किंतु लेकिन अन्न देहाय दूसरी देह के लिए गुणान गुणों को नहीं वृत्ते भोगता है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की जय। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्म बस प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कार्य नहीं करता। तात्पर्य, बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, तो फिर वे आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार के बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें? वे आत्मज्ञान में इतना आगे जो थे, इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं दिखती हैं, किंतु जागने पर मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली प्रकार से यह जानता है कि वह यह नहीं वरन आत्मा है। बीबीटी वाला कोई है? वह यह देह नहीं वरन आत्मा है, देह से छुटकर है, अज्ञानवश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उसका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख भगवत गीता 3:9 में हुआ है। ज्ञानार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि कोई यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसका बंधन नहीं होता, किंतु कर्मीजन जो अपने लिए कर्म करते हैं वे अपने कर्म फलों में बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार से कर्म करता है कि कर्मों के फलस्वरूप दूसरा शरीर न धारण करना पड़े, जैसा कि भगवत गीता 14:26 में स्पष्ट किया गया है। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुणांसम तैतित समगुणांसम तित्तैतान ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी में उससे च्युत नहीं होता, जो किसी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वह अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चाहे पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए गए हों, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम ब्रह्मभूत मुक्त दशा को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निरमायसे ते अदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकम् सोलम कृषिष्टम भगवन् वशांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवये मच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलिप्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। तो ये जो अध्याय है जो ये स्कंध है पांचवा स्कंध का ये प्रथम अध्याय भी प्रारंभ हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भागवत में 12 विषय वस्तुओं का निरूपण किया गया है, 12 स्कंधों में 10 विषय वस्तुओं का निरूपण किया गया है। साउंड ठीक है, मैं गला पर जोड़ पड़ रहा है। संदीपनी कहां चला गया? लगता है संडे होने के चलते ब्रह्मचारी लोग आराम करते हैं, सोचते हैं बहुत अंग्रेज में आता है क्लास में, बताऊंगा की जरूरत नहीं है। ये ना संदीपनी थोड़ा मेरे तन जा रहा है, संदीपनी मुझे मेरे तन नहीं जाता है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उतय मनमंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्तिम आश्रय। ये जो 10 तत्व हैं उनमें से तीसरा जो तत्व है, तीसरा जो विभाग है, तीसरा जो विषय वस्तु है वह है स्थान। तेन तुया लीला सा चतुर्थे निरूपिता अस्थानम लीला पंचमे तु षड विषत्या निरूप्यते। चतुर्थ स्कंध में भगवान के जिस लीला का वर्णन किया गया, विसर्ग लीला का, वो हम लोगों ने सुना। ये जो पांचवा स्कंध है इसमें स्थान लीला का वर्णन किया गया है। ये पूरे पांचवें स्कंध में सब मिलाकर के 26 अध्याय हैं और 26 अध्यायों में स्थान लीला का वर्णन किया गया है। स्थान का मतलब तो आप समझते हैं ना, जैसे बैठे हैं बैठने का स्थान, सोते हैं सोने का स्थान, अलग अलग स्थान होता है। लेकिन असली स्थान क्या है उसका वर्णन भागवतम में किया गया है। अन्य स्थानों का भी वर्णन किया है लेकिन असली स्थान जो है उसका वर्णन किया गया है। और असली स्थान है स्थिति वैकुंठ विजय, वैकुंठ विजय, वैकुंठ को प्राप्त करना यानी चिंता मुक्त हो जाना, भगवत धाम को प्राप्त करना, वही अपना असली स्थान है। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो परम धाम हम लोगों का असली स्थान है। ये बंबई और ईपी और बिहार गुजरात उड़ीसा ये सब अपना स्थान नहीं है, असली स्थान जो है वह है वैकुंठ। प्रभुपाद जी कहते थे बैक होम बैक टू गॉड है, वो अपना असली स्थान है। तो उस असली स्थान के विषय में वर्णन इस पांचवें स्कंध में किया गया है। अब उसके वर्णन के क्रम में यहां जो प्रथम अध्याय है इसमें महाराज प्रियव्रत के कथा का वर्णन किया जा रहा है। मनु महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के जो संतान ध्रुव और उत्तम, उनका वर्णन हम लोगों ने चौथे स्कंद में सुन लिया है। महाराज प्रियव्रत भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं, वैरागी। नारद जी से वे शिक्षा ग्रहण किए थे, अब उनका भक्त ट्रेनिंग हो गया था, पूरा भक्त ट्रेनिंग हो गया था, अब वो दीक्षा लेने जा रहे थे। नारद जी थे, दीक्षा लेने जा रहे थे, उसी समय उनके पिताजी वहां पर टपक पड़े, मनु महाराज। ऐसा कभी कभी होता है ना, हमारे भक्त लोग भी वो दीक्षा के लिए बैठते हैं, बाप मां आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, अरे हमारे बेटे को भगत कैसे बना दिया। तो मनु महाराज वहां पर आ गए, अब दीक्षा के लिए रेडी हो गए थे महाराज प्रियव्रत। उस समय मनु जी आ गए और उनसे बात करने लगे कि बेटा, जैसे बाप मां आते हैं, आकर के जब देखते हैं कि बेटा साधु बन गया, बाल मुड़ा लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, अरे वो साउंड सिस्टम में तुम्हारा साउंड सिस्टम ज्यादा अभी है, आप लोग साइलेंस पर कर दो फोन को, नहीं तो बंद कर दो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, हमें तो बहुत अनुभव है। दीक्षा से पहले दीक्षा के दिन भी आ जाते हैं। एक डिवोटी हुआ करता था, उसका नाम था संकीर्तन दास। कृष्ण मुरारी प्रभु इधर है, पता नहीं कहाँ है, संकीर्तन दास। उसके बाप माँ का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, वो भक्त बना, भक्त डायरेक्टर था। उसका बाप कहा कि आपको हम गोली से उड़ा देंगे। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा, क्योंकि वो भक्त बन गया था। तो मैं कह रहा था कि भक्त बनने पर सामान्यतः बाप मां को पता नहीं दुख क्यों हो जाता है। वो जानते हैं कि बेटा डंडा मारेगा, सेवा नहीं करेगा, जैसा कि भी हो रहा है, शादी होने पर बीवी का सेवा करेगा, मेरा सेवा नहीं करेगा। ये पंखा बंद करा भाई, किसको हेलीकॉप्टर चाहिए, बंद करा, बंद करा। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, असली बात नाथ जी प्रभु बता सकते हैं, इनको एक्सपीरियंस है इसका। भगवान का सेवा नहीं करेगा, फिर भगवान का भजन कोई करने आता है तब तक नहीं, वो क्या हो जाता है, कोई शराब पिए, बेविचार करे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भक्त बन जाएगा, अब देखिए रोना धोना शुरू करेंगे, सब तरफ जाकर के प्रचार करेंगे, मेरा बेटा पागल हो गया, थोड़ा समझाओ उसको, पता नहीं क्या हो गया इत्यादि इत्यादि। जानते हैं ना, ऐसा अनुभव खराब काम करेगा लोग छिपाएंगे नहीं, कोई बोलेगा भी कि आपका बेटा ऐसा खराब करता है, हमारे बेटे कितने करके बोल सकते हो, हमारा बेटा अच्छा है। और भजन में संसारिक लोग ऐसा करते हैं, हालांकि महाराज मनु की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। महाराज मनु उस प्रवृत्ति से इनको लाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपने गुरु और पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया गया था सृष्टि रचने का। तो जो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में होता है उसी डिपार्टमेंट का गुणगान गाता है ना, वो कहता है हमारा डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, ये प्राणेश्वर प्रभु से कोई पूछ ले, ये पूछें, ये कहेंगे लाइफ मर्सी डिपार्टमेंट 10th क्लास का है, अपना IYA फर्स्ट क्लास का है ना। नहीं अभी नहीं छोड़ दिया, पहले कर देते। संकीर्तन वाले कहते थे पहले, तू मंदिर में क्या करते हो, चलो संकीर्तन, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर में क्या करते हो, फर्स्ट क्लास है बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
तो जिसका अपना जो डिपार्टमेंट है, पुजारी कहेगा पुजारी फर्स्ट क्लास, महाप्रसाद मिलेगा, आराम भी मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, पुजारी फर्स्ट क्लास है। सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट गुणगान करते हैं, अपना अपना सेवा अच्छा है, अपने सेवा का गुणगान करना। तो उनको ब्रह्मा जी को सेवा दिया गया था सृष्टि का रचना करने का, फैलाने का। तो जो बाप का सेवा है, पुत्र का काम है कि बाप के कार्य में सहयोग करना। तो मनु महाराज भी सहयोग में लगे हुए थे, सृष्टि के एक्सपेंशन में लगे हुए थे, बढ़ाने में लगे हुए थे। तो मनु महाराज का जब बेटा हुआ तो स्वाभाविक है उसको भी उसी में लगा रहे थे, अपने लिए नहीं। मनु महाराज अपने लिए नहीं रो रहे थे कि तू साधु क्यों बन रहा है, तू ब्रह्मज्ञानी क्यों बन रहा है, तू भक्त क्यों बन रहा है, बल्कि उन्हें दुख था या जो कह रहे थे किसके लिए, कि सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। आप जानते हैं कि जहां पर किसी चीज की कमी होती है वहां पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। हम लोग कुछ दिन पहले गए थे तलाशरी फार्म, तो हमारे दामोदर प्रभु कह रहे थे कि यहां की जो लड़कियां हैं आदिवासी की लड़कियां, उन लोगों को गवर्नमेंट 1000 रुपया भी देता है, एक साइकिल देता है ताकि वो स्कूल जाए। अब बॉम्बे में 1000 रुपया तो कौन नहीं जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए है? वो क्यों देता है गवर्नमेंट, ताकि लोग स्कूल जाए। लक्ष्य क्या है, स्कूल जाए। जहां आबादी कम है तो वहां लोग बसाते हैं। अमेरिका का क्या कहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सब लोग आ जाए बसो। अभी वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है, याद रखना कोई अमेरिका नहीं जा सकता है, अभी बड़ा तकलीफ है, पहले था। तो मनु महाराज महाराज प्रियव्रत को समझाने का प्रयास किए, लेकिन महाराज प्रियव्रत को रस लग गया था। किसका रस लग गया था, भक्ति रस का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब जिसको हायर टेस्ट मिलता है वो लोअर टेस्ट में क्यों जाएगा, रसवर्जा सोपस्या परम दृश्यमान निवर्तते। जिसको हायर टेस्ट मिला है वो लोअर टेस्ट में क्यों जाएगा। तो भगवान का भक्ति करना ये हायर टेस्ट है, और संसार के विषय वस्तुओं को भोग करना ये लोअर टेस्ट है। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिपेंडिंग ये लोअर टेस्ट है। तो जिसको हायर टेस्ट मिल गया है वो लोअर टेस्ट में क्यों जाएगा। तुम्हारा ये प्रियव्रत को हायर टेस्ट मिल गया था, इसलिए वे लोअर टेस्ट में नहीं जाना चाहते थे। घर गृहस्थी का जीवन जो है वो हेडक का है। मैं कहता हूं ये झंझट क्लब है, शादी विवाह जो है ना झंझट क्लब, टू मच टेंशन, झंझट क्लब, कभी ज्वाइन मत करना झंझट क्लब को। तुम्हारा ये प्रियव्रत झंझट क्लब का मेंबर नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने सीधे फ्लैटली मना कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाप का और गुरु का दो परिस्थितियों में हम आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। एक जब शादी विवाह के लिए गुरु जी कहें हरादास, तो बोलना गुरु जी रहने दो हम शादी नहीं करेंगे, है ना, उसको उल्लंघन कर सकते हैं। और जब गुरु या बाप कहे कि भगवान को मत अर्पण करो, मायावाद का सिद्धांत देता है, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे बलि महाराज ने किया। और चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को रिजेक्ट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम लोग सृष्टि करो, शादी विवाह करो, कहा पिताजी ये नहीं करेंगे हम लोग, हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। तो बाप के आज्ञा का उल्लंघन पुत्र कर सकता है। तो शास्त्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार महाराज प्रियव्रत का यह कह देना कि हम झंझट क्लब ज्वाइन नहीं करेंगे, ये कोई पाप नहीं है, अवज्ञा नहीं है, ठीक है, चलता है। अब बेचारे दुखी हो गए महाराज प्रियव्रत। ब्रह्मा जी को इसका ज्ञात हो गया, सॉरी मनु महाराज दुखी हो गए, ब्रह्मा जी को इस बात का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी महर्षि आदि अन्य प्रजापतियों के साथ में अब आए। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल, डियरर देन कैपिटल, यस इंटरेस्ट इज डियरर देन कैपिटल। तो ये जो प्रियव्रत जी थे वो ब्रह्मा जी के क्या हैं? इंटरेस्ट हैं। अरे इस भाषा में बात करो ना, वो भाषा छोड़ो, अपना जो लोग समझ सकते हैं वही भाषा बोलो जो समझ सकते हैं। तो प्रियव्रत जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के इंटरेस्ट हैं, पोते हैं, है ना वासुदेव जी? पोते जो होते हैं दादा दादी के बड़े प्रिय होते हैं। करभाजन प्रभु जो कितना मुड़ी डुला रहे हैं, पोते हुए कि नहीं अभी तक? हुए ना? जय श्री गौर निताय राधारस व्यास रामचंद्र नाम की जय। तो प्रियव्रत जी पोते थे, पोते लोग दादा से दिल खोल कर बात कर सकते हैं, बाप से थोड़ा डरते हैं, अनुभव है सब लोगों को ना, दादा दादी से दिल खोल कर बात करते हैं और दादा दादी भी पोतों को सब बात बता देंगे, बेटे को नहीं बताएंगे। कितना बैंक बैलेंस है वही पोते को बता देंगे लेकिन बेटा को कभी नहीं बताएंगे भूलकर। ये संबंध है पोतों और दादा। तो अब प्रियव्रत जी को ब्रह्मा जी समझाने आए हैं। अब इन नौ श्लोकों में नौ अखंड अक्षर अंक है, इन नौ श्लोकों में ब्रह्मा जी ने समझाया है प्रियव्रत जी को। अब तक से श्लोक संख्या 15 तक समझाए थे संसारिक लोगों के विषय में, कर्मबंधन के विषय में, भगवान के संबंध में थोड़ा बताए कैसे भगवान की इच्छा से सब लोग यहां पर सुख दुख भोग रहे हैं, ऐसा अपने कर्म के अनुसार और भगवान उनके कर्मों के अनुसार ने देते हैं। इसके पहले का जो श्लोक इसमें कहा गया है, हे प्रियव्रत श्री भगवान विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। जब मानो ये बात बतला लिए तो देखिए अगेन समझने के लिए जरूरी है ये बात समझना कि दादा और पोते का संबंध, दादा और पोतों में कोई बैरिकेट नहीं होता है, वो सीधे बोल देते हैं पोते लोग जो बोलना होता है। तो मानो महाराज प्रियव्रत बोल दिए ये सब बात, दादाजी आप जो कह रहे हैं ठीक है उन लोगों के लिए जो संसार में रचे पचे हैं, ये संसारी लोगों के लिए है, अरे हम तो नारद जी की कृपा से अब हरे किस्म वाला हो गए हैं, अब तो हम भजन कर रहे हैं, तो हम भजन कर रहे हैं, हम मुक्त आत्मा हो गए हैं, हम पर थोड़ा नियम लागू होता है, ये घर गृहस्थी का ये प्रवृत्ति मार्ग हमारे लिए नहीं है, हम तो निवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, हम तो हरि भजन में लगे हुए हैं और आप प्रवृत्ति मार्ग में ले जाना चाहते हैं दादाजी, ये ठीक नहीं है। नारद जी कृपा से हम अब निवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं। नारद जी वहीं पर थे, उनके पिताजी भी थे और दादाजी भी आ गए। अब नारद जी जब देखे कि ब्रह्मा जी आए तो बड़ा बड़ा किया कि वो भी तो पिता है ना, लेकिन वहीं पर नारद जी भी थे। अब नारद जी भी देख रहे हैं चेला क्या बोल रहा है, कितना सक्षम है, कितना कन्विंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। दो चीज होता है, एक होता है श्रद्धा और एक होता है विश्वास। आज लोगों में श्रद्धा की कमी नहीं है, लोगों में खूब श्रद्धा है लेकिन विश्वास बहुत कम है, विश्वास बहुत कम है। आज देखो तो पूरे भारतवर्ष में कितना भागवत कथा हो रहा है, हैं? भक्ति के लिए या देखो भागवत कथा या हरिनाम या अन्य चीज भगवान से संबंधित बहुत हो रहा है, भीड़ भी खूब होता है, लाखों लोग आते हैं, श्रद्धा है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है, बहुत कम विश्वास है, प्राय नहीं के बराबर है। श्रद्धा और विश्वास किसे कहते हैं? श्रद्धा जब परिपक्व हो जाता है तो विश्वास कहलाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कौ सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, और वह विश्वास जो सुदृढ़ निश्चयता को दे, सुदृढ़ निश्चय। और वो सुदृढ़ निश्चयता क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। आज भजन कर रहे हैं, कुछ दुख हो गया, श्रद्धा से भजन कर रहे हैं, टाइम से मंगल आरती आते हैं, टाइम से प्रवचन सुनते हैं, टाइम से गीता पाठ करते हैं, टाइम सब कुछ करते हैं, और कुछ तकलीफ आ गया तो भगवान हमारे ऊपर क्यों आ गया? वो विश्वास कहां गया? भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा के लिए करते हैं तो हमें दुख क्यों? ये विश्वास की कमी है। भक्त लोग, सब लोग, अब श्रद्धा कैसे होता है और विश्वास कैसे होता है इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। श्रद्धा एक तो संस्कार से प्राप्त होता है, घर में संस्कार बाप मामा दिया है, उस संस्कार से श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा प्रायः अंधा होता है, अंध श्रद्धा नहीं, श्रद्धा अंधा ही होता है, और उसी श्रद्धा को पॉलिश किया जाए तो ठीक होता है, नहीं तो श्रद्धा अंधा ही होता है। अंधविश्वास जो कहते हैं ना, विश्वास जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास, तो जिसमें अंधा श्रद्धा है अंधा ही विश्वास होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे आंख खोल कर स्वीकार करो मुझे, आंख बंद करके मत स्वीकार करो, मैं कह रहा हूं। तो श्रद्धा होता है एक संस्कार के द्वारा और एक संगति के द्वारा। जैसा संगति होगा वैसा श्रद्धा उत्पन्न होगा। वर्णन किया गया है कि यही श्रद्धा जब साधुओं की संगति में हो तो साधुओं के आचरण से श्रद्धा प्रगाढ़ होता है, आचरण से। आदो श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा। जो निष्ठा है वह है विश्वास, निष्ठा विश्वास है। तो विश्वास तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले साधुओं की संगति करनी पड़ेगी। भैया तू सोएगा तो कहां संगति करेगा, निद्रा का संगति कर रहा है। एक कहानी बताऊं, जब भगवान राम ने वो कुंभकर्ण को मार लिया ना, नाम सुना है कुंभकर्ण का? जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो निद्रा देवी भगवान राम के शरण में आई रोते हुए कि प्रभु मैं बड़ा अच्छा से आराम कर रही थी 6 महीना कम से कम, अब तो आपने इसको मार डाला, अब मैं कहां जाऊंगी? तो भगवान राम ने कहा कि जहां मेरी हरि कथा होती होती ना तो वहां पहुंच जाना, जहां कथा होती वहां पहुंच जाना। आप देखना पॉलिटिकल बात होने लगे यहां पर कि अन्ना हजारे ये किया वो किया, सबका आंख खुल जाएगा, कान खुल जाएगा, कोई नहीं सोएगा, और कथा हो रही तो ठंडी मारे। ये भगवान राम का आशीर्वाद है निद्रा देवी को। हाँ जी, क्या मैं कह रहा था? श्रद्धा, आदव श्रद्धा तथो साधु संगत। साधुओं की संगति बहुत जरूरी है, और जो साधुओं की संगति होगी तो भजना क्रिया स्वाभाविक है। भजना और क्रिया, कुछ कार्य करेंगे, सोलह माला जप करेंगे और कुछ सेवा करेंगे, भजना क्रिया। जब ये भजना क्रिया करेंगे तब अनर्थ अनुवृत्ति। आप में से कितने लोग जानते हैं गुड़ कैसे बनाना? तो हाथ उठाओ, तो गुड़ बनाने वाला गांव वाले जो होंगे जानते होंगे। चलो, कुछ लोग तो जानते हैं गुड़ कैसे बनाना है ना। चलिए थोड़ा हम देखते हैं, गुड़ बनाते हैं अभी, गुड़ कैसे बनता है। वो गन्ना के रस को कड़ाही में रखते हैं, अभी फार्म में गुड़ बनाएंगे, उधर गन्ना लगा देना। उसके बाद में आग जलाते हैं, है ना। तो जो आग जलाना हुआ, हम इस नौ स्टेज है उस पर लेकर के जाएंगे, कैसे गुड़ बनता है। उसमें भी नौ अलग अलग स्टेज होता है गुड़ बनने से पहले। और ये आदव श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इसमें भी नौ स्टेज है। जब आग लगाना वो है आदव श्रद्धा तो शासन भजना क्रिया, भजना क्रिया शुरू हो गया है। जब आग लगता है, जब वो रस जो होता है गर्म होता है, तो गर्म होने से क्या होता है हरदस है नहीं, वो गंदगी साइड में आ जाता है ना। क्या उसे गंदगी बोलते हैं है? माही है, हाँ जो भी है, काला काला साइड में आ जाता है। वह परिस्थिति जो हमारे साथ में, वह अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद थोड़ा और खोलता है तो डुब 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 करने लगता है, तो आदव श्रद्धा तो साध संगत भजना क्रिया अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद थोड़ा गढ़ा जैसे होने लगता है, कलर उसका आने लगता है, कलर दिखाई पड़ने, पहले पतला पानी के समान था, अब थोड़ा गढ़ा हो गया है, बल्कि उसको निकाल करके पानी में डालो एक बूंद को तो अपना सिर पकड़ने लगता है, वो कहलाता है रुचि। और बाद में आता है निष्ठा। मैं भी भूल गया हूं, गुड़ बनाए बहुत दिन हो गए, 30-35 साल 32 साल हो गए, भूल गया। आजकल तो गुड़ भी नहीं बनता है, आजकल लोग गन्ना नहीं रखते हैं, पहले लोग। अभी हरिद्वार तरफ है, हरिद्वार से दिल्ली आओगे तो बहुत गुड़ बनता है, आजकल तो सीजन है गुड़ का। एनीवे, तो निष्ठा जो है वह विश्वास जो है वह यह है कि अवश्य राखिबे कृष्ण, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, यही है विश्वास, विश्वास का पालन। तो श्रद्धा लोगों में है, विश्वास की कमी है। नारद जी वो विश्वास जगाए थे महाराज प्रियव्रत में, विश्वास था। और ब्रह्मा जी के कथनानुसार जब ब्रह्मा जी से बात हो रही थी तो महाराज प्रियव्रत कह दिए कि देखिए ये सब ठीक है, संसारी लोग जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए, हम तो भजन कर रहे हैं, अब आप हमको क्यों चाहते हैं यह कार्य करें, हम इस संसार में नहीं फंसना चाहते हैं। तब तो कहते हैं कि बेटा, कभी कभी नाती को भी बेटा कह देते हैं, कहते हैं बेटा मुक्तोपि, ध्यान दीजिए इधर, अरे मुक्त आत्मा जो है, जो मुक्त हो चुका है, मुक्त किसे कहते हैं? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। अन्यथा रूप को जो त्याग दिया है, अन्यथा रूप क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये जितना दैहिक धारणा है वो सब अन्यथा रूप है। और स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। हम लोगों का स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, जीव रे स्वरूप है
कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण के दास है, उसमें स्थिति हो जाना। तो महाराज प्रियवर्त स्वरूप में स्थित हो गए थे, स्वरूपेण व्यवस्थित विशेष रूप से स्थित हो गए थे अपने स्वरूप में। तो उनके लिए ये नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्तो अपि। देखिए यहां पर दो महाजन हैं, नारद जी भी महाजन हैं और ब्रह्मा जी भी महाजन हैं। एक महाजन, दोनों महाजन एक ही काम कर रहे हैं, भगवान के सेवा में लगना। एक महाजन ने प्रचार कर दिया तो बेटा ब्रह्मचारी रहना, वो कौन महाजन थे? नारद जी। अब दूसरे महाजन प्रचार कर रहे हैं बेटा शादी विवाह कर लो, घर गृहस्थी में रहो, भजन करो, गृह था को बने था को सदा हरि बोले डाको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नहीं करा तो हरे कृष्ण का जप मत करो, लेकिन शादी विवाह कर लो। आजकल के बाप माँ ऐसे ही कहते हैं कि भजन करना मत छोड़ो, हम नहीं कहते हैं, लेकिन शादी विवाह कर लो, लेकिन वो तो लॉलीपॉप ही है, एक बार हो गया तो गए काम से, गया चौपट, क्योंकि नाराज जी का संग अभी तक नहीं हुआ है। महाराज प्रियव्रत को नाराज जी का संग हो गया था। दो महाजन यहां पर है, उनके सामने महाराज प्रियव्रत बात कर रहे हैं और वो लोग बात कर। तो मुक्तोपि तावद विभ्रियात स्वदेहम, कहते हैं मुक्त पुरुष भी देह धारण करता है। अब देखिए यहां पर तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार, ये बात समझने की बात है, एक जो है नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध जो भी होते हैं। यहां पर नित्य मुक्त जीव के लिए बात नहीं कही गई है, याद रखिएगा। वो जो नित्य मुक्त जीव देह धारण करता है वो अपने कर्म के बस होकर के जन्म धारण नहीं करता है, इसलिए ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं आरब्ध, आरब्ध करके यानी ए भजन के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया। ये जो जीव है, जो मुक्त जीव होते हैं उनको भगवान स्पेशली देह देते हैं, जो पार्टिकुलर सेवा हो उसके अनुसार, और वो हमेशा मुक्त ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी नित्य मुक्त, कभी कभी मुक्त जीव भी मुक्ति के साधन में, मुक्ति के मार्ग में कभी कभी विचलित होते हैं एक सेकेंड भी, तो उन पर ये जरूर लागू होता है। मुक्त देह दो प्रकार का बताया, एक जो नित्य मुक्त है और एक साधन के द्वारा जो मुक्त हुए, जैसे भरत जी। भरत जी साधन के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे, भाव के स्टेज पर चले गए थे भरत जी, लेकिन इस हरिण के संग के चलते कर्म फल बन गया, तो उन्हें हरिण का देह धारण करना पड़ा। लेकिन हरिण का देह धारण करने के बावजूद भी वो हरिण जैसा वर्ताव, हरिण के देह में थे लेकिन समझ रहे थे कि मैं हरिण के देह में हूं। हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम इस देह में हैं, हम समझते हम यही देह हैं। तो बद्ध जीव का पहचान है, और मुक्त जीव जो है वह देह धारण करने के बाद भी वो अपने स्थिति को नहीं भूलता है। तो मैं यहां पर कह रहा दो प्रकार के मुक्त जीव आत्मा, एक तो स्वरूपतः मुक्त हैं, नित्य मुक्त हैं, वो भगवान के इच्छा के अनुसार देह धारण करते हैं भगवान का स्पेशल कार्य करने के लिए, और वो भी समान लोगों के समान कार्य करते हैं,
और लेकिन उनका वो मैंने कर्म फल के अनुसार देह धारण नहीं किए, लेकिन दूसरे जो नित्य मुक्त हैं, जो भजन के द्वारा मुक्त हो गए हैं, लेकिन किसी कारणवश भजन नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ी हो गया तो कर्म फल के अनुसार। तो यहां पर दोनों को देखना जरूरी है। तो मुक्तोपि तावद विभ्रात स्वदेहम आरब्धम, तब तक वे देह धारण करते हैं या वे देह धारण करते हैं जब तक से उनके कर्म फल होता है और उसके अनुसार वे इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन मनुष्य देह स्वीकार करने हो के बावजूद भी, चूंकि वे मुक्त देह आत्मा हैं, यहां कहा गया अभिमान शून्य, भजन करने के लिए अभिमान शून्य होना बहुत जरूरी है। अभिमान शून्य हो या करो ये भजन, दयालुता ही चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, अभिमान शून्य हो या भजन करना है तो अभिमान शून्य। अब अभिमान के कई एक परत हैं, कई एक लेयर हैं। पहला तो अभिमान यह है कि अपने को देह मानना, कि मैं देह हूं, और देह से संबंधित जितने वस्तुएं हैं उनसे संबंध, ये अभिमान का पहाड़ है। जो लोग सो रहे हैं हाथ उठाइए, देखो सुलोचन उठा दिया ना पहले, जानता हूं तो सो रहे हाथ उठा सकते। तो अभिमान का पहाड़ है, समझ रहे हैं इस बात को ना। मुक्त आत्मा का परिभाषा यहां बताया गया है कि मुक्त आत्मा भी देह ग्रहण करता है अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन अंतर क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कैदी जेल में जाता है और कभी कभी जेल का सुप्रिंटेंडेंट भी आ जाता है, है? दोनों जेल में आए हैं लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। एक बद्ध है जहां के दूसरा मुक्त है। वैसे ही शरीर धारण करने में भी जो मुक्त जीवात्मा है और बद्ध जीवात्मा है, दोनों में अंतर क्या है ये बताया गया है। मुक्त जीवात्मा का अंतर अभिमान शून्य, सुप्रिटेंडेंट जो है वो अभिमान शून्य, मुक्त जीव जो है वो अभिमान शून्य, जो बद्ध जीव है वो मिथ्या अभिमान से भरा पड़ा है, अपने को देह समझता है, अपने को रिक्शा समझता है, अपने को टैक्सी समझता है, है? मैं कहता हूं यहां बम्बे नहीं, बाहर प्रचार करता हूं, तो कहता हूं कि बम्बई में लोग कहते हैं ए रिक्शा इधर आओ, बम चलाता है वो, कोई नहीं बोलता है रिक्शा वाला इधर आओ, रिक्शा इधर आओ, वो अपने को रिक्शा समझता है, ए टैक्सी इधर आओ, बुम टैक्सी लेकर चलाता है, कोई नहीं बोलता टैक्सी वाला इधर आओ, बोलता है कोई टैक्सी इधर आओ, तो अपने को टैक्सी मानता है, अपने को टैक्सी मानता है, कोई रिक्शा मानता है, ये है मिथ्या अभिमान, आत्मसात कर लिए हैं। तो यहां पर पहले स्टेंजा में वर्णन किया गया है मुक्त जीवात्मा का परिभाषा बताया गया है। भले ही मुक्त जीवात्मा ये देह धारण करता है, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यहां पर बताए हैं कि बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि यह देह नहीं वरन उससे भिन्न वह आत्मा है, देह में रहते हुए भी देह से अलग है। दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है नारियल का। नारियल जब कच्चा होता है तो पानी होता है, लेकिन इनका सूर्य का रोशनी लगते 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 एक समय ऐसा आता है कि नारियल अपने सेल को छोड़ता है, गुड़ 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 आवाज आएगा, है ना। बाहर से तो सेल है लेकिन अंदर उस सेल को छोड़ दिया है। तो वैसे ही बद्ध आत्मा जब मुक्त आत्मा की स्थिति में आ जाता है और जब आग लगता है ना गुड़ बनाने के लिए, है? तो भजन करने लगता है, तो भजन के आंच से, भजन के आग से वो इतना विरक्त हो जाता है कि देह में रहते हुए भी देह से अलग रहता है, रक्तवत
देह से अलग रहता है। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें मुक्त जीवात्मा का परिभाषा बताया गया कि अभिमान शून्य रह करके देह धारण करता है, जो कि दूसरा जो है अभिमान युक्त होकर के देह धारण करता है। अब उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति सोता है तो सपना देखता है, सपना को जगने के बाद कोई व्यक्ति सीरियसली उसको नहीं लेता है, हाँ सपना था, नाइटमेयर था, खराब था, अच्छा था, जो भी था, उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक वैसे ही मुक्त जीवात्मा जो है, जितात्मना प्रसन्तस्य परमात्मा समाहृत शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जो मुक्त आत्मा है, जिस प्रकार से स्वप्न के सुख और दुख से हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से संसार के सुख और दुख से वह व्यक्ति प्रभावित नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि सुख दुख नहीं आता है, आता है, ये नहीं कि हरे कृष्ण वाले बन गया तो हमें कोई दुख नहीं होगा, दुख ज्यादा बल्कि होगा, मेंटल फिजिकल सब प्रकार का दुख होगा। लेकिन उस दुख से प्रभावित नहीं होता है भक्त, जो भक्त हो जाता है दुख उसका स्पर्श नहीं करता है। जैसे स्वप्न, यहां पर उदाहरण दिया गया है, यथा अनुभूतम प्रतियात निद्रा, प्रतियात निद्रा, जब निद्रा से हम जगते हैं और कुछ स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न से हम लोग यथा अनुभूतम, जिसका अनुभूति हुआ है स्वप्न का, चाहे वो सुखमय स्वप्न हो या दुखमय स्वप्न हो, हम कहते हैं भाई स्वप्न है, कोई बात नहीं है, कौन रोता है उसके लिए, स्वप्न देख करके कौन रोता है, जो मूर्ख है, स्वप्न में कोई अच्छा किया तो खूब नाचता है और कुछ गड़बड़ हो गया तो रोना शुरू करता है, जो आसक्त है, जो स्वप्न में आसक्त है, लेकिन जो स्वप्न में आसक्त, हाँ सपना था कोई बात नहीं चिंता मत कर, तो वैसे ही मुक्त आत्मा जो है वो सुख और दुख को स्वप्नोत मानता है, उससे वह परे रहता है, या भ्रांति रहित सब कहा गया है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्म बस प्राप्त सुख तथा दुख उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देख गए स्वप्न को, स्वप्न को कोई सीरियसली नहीं लेता है, वैसे ही सुख दुख को। तो भागवत के इस, ब्रह्मा जी के इस उपदेश से हम सीख सकते हैं कि संसार में कितने मूर्ख लोग हैं, ये मूर्खों का संसार है, जो सुख दुख में पड़े हुए हैं, और जो भक्त बन करके सुख दुख में पड़ा हुआ है वो तो और महामूर्ख है, जो नहीं जानता है वो तो मूर्ख है, और जो जान कर करके, लो उनको पता भी नहीं कि उनका मोबाइल बज रहा है, ये देखे बाबा क्या भजन लगाए हैं अपने मोबाइल, क्या बोल रहा था मैं, हाँ भक्त बन करके भी हम सुख दुख में फंस जाते हैं, उसने हमको ऐसे किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसे किया है? और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हम निंदा स्तुति में लगे रहते हैं। तो यह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो स्वप्न के दुख से दुखी रहता है और जो स्वप्न के सुख से सुखी रहता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग,
स्वप्न के दुख से है? तो संसार का सुख दुख जो है वो स्वप्नवत है। अंतिम जो पैसेंजर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुक्त पुरुष का ही पूरा बात बताया गया है। ये पूरे श्लोक में मुक्त पुरुष का परिचय दिया गया है, ठीक है ना। ऊपर बताया गया है कि मुक्त पुरुष देह धारण करता है, वो जानता है कि देह धारण किया है, कोई भी देह हो, और वो जानता है हमारे कर्मों के अनुसार हमको ये देह मिला हुआ है, और अभिमान में सुन होकर के भजन में लगा रहता है। उसमें अभिमान नहीं होती है, देहाभिमान नहीं होती है। दूसरा, देह चूंकि धारण किया है, जब तक से देह है तब तक से दुख होगा ही। ये देह दिया जाता है दुख देने के लिए ही, दुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए देह दिया जाता है। कृष्ण बोलिया से जीव भोगवांछा करे, नहीं, कृष्ण बोलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसारे दुख। संसार में दुख देने के लिए भगवान अच्छा व्यवस्था किए हैं, देह दे दिए हैं। बिना देह के तो भूत बन जाएंगे, फिर सुख दुख कहां होगा। भूत को देह नहीं होता है ना। नरक में भी देह दिया जाता है, उस देह का नाम क्या है, यातना देह। बिना देह के आनंद नहीं आएगा ना, ना तो दुख आएगा ना सुख आएगा। तो देह दिया गया है हम लोगों को दुख देने के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए। तो अभिमान न सुनने भैया, अभिमान न सुनो कर तो समझता है कि देह दिया गया है किस लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, इसलिए सुख दुख से प्रभावित नहीं रहता है। और करता क्या है वो बताया गया है, किम तू अन्य देहाय गुणा न भ्रुंगते या भुंजते। लो, अरे बंद करो ना, क्या कर रहे हो आप, जाइए बात कर लीजिए, कोई जरूरी बात होगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से किंतु परंतु तू मतलब निश्चय ही अन्य देहाय, अरे एक देह तो भैया मिल गया है जिसे इतना दुख हो रहा है, पुनः दूसरा देह न प्राप्त करना पड़े, इसीलिए गुणाय न भुक्ते। गुणाय मतलब विषय वासना, वो विषय वासना का भोग नहीं करता है, विषय वासना में वो नहीं लगता है, यह समझते हुए कि विषय वासना दूसरा देह प्राप्त करने का कारण है। विषय वासना से कर्म फल होता है और कर्म फल से हमें दूसरा देह प्राप्त होता है, ऐसा समझते हुए वह मुक्त पुरुष जो है वो विषय वासना में नहीं लगता है। तो मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कार्टून लोग हैं यार, मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पोते चिंता मत करो, जो तुम मुक्त पुरुष का बात कह रहे हो, मुक्त पुरुष कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मुक्त पुरुष का यह परिभाषा है। ये पूरा श्लोक मुक्त पुरुष की परिभाषा को बतलाया है। मुक्त पुरुष जानता है कि देह मिला है हमारे कर्मों के फल के अनुसार। मुक्त पुरुष देह ग्रहण करने के बावजूद भी देह के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। मुक्त पुरुष देह ग्रहण करने के बावजूद भी देहाभिमान में नहीं रहता है, वो सुख दुख को सपनों समझते हुए पुनः देह प्राप्ति का जो साधन है यानी विषय वासना का भोग, उसमें वो नहीं रचता पड़ता है, वह यह कार्य नहीं करता है। यह मुक्त पुरुष का असली परिभाषा है। यानी सब मिलाकर के ब्रह्मा जी यही कहना चाहते हैं कि घर गृहस्थी बसाने से ऐसा बात नहीं है कि तुम मुक्त पुरुष नहीं रहोगे। प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में बतलाते हैं, इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली प्रकार से जानता है कि वह यह न वह देह नहीं वरन आत्मा है, अज्ञान बस किए गए विगत कर्म नहीं, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उसे चित नहीं होता, वो अविलंब कहा था कहीं पढ़ा, नहीं है कमेंट्री में पढ़ा, तो ब्रह्मा जी टुवर्ड्स द एंड समझा रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि जो मनु कह रहे हैं यदि वो तुम बात करोगे, उनका आज्ञा पालन करोगे जो कह रहे हैं, तो तुम बद्ध जीव के समान देहाभिमान में लग जाओगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह भगवत सेवा है। भगवत सेवा जो है वो मुक्ति का साधन है। वो इसी बात पर वो कहे हैं गुणान, हाँ अभी याद आया मुझे, वो गुणान का परिभाषा दिए हैं कि गुणान जो है विषय वासना जो है वो मुक्त पुरुष फंसना ही नहीं है, उसे स्पर्श नहीं कर सकती है, जैसे कमल का पत्ता, कमल का पत्ता पानी में रहता है, कितना भी पानी आए पानी से ऊपर रहता है, पानी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो एक तरह से समझाते हुए कह रहे हैं कि बेटा तू कमल के पत्ते के समान है, चाहे तू ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, तुम्हें उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो यह कार्य करो। और ब्रह्मा जी जब समझाए तो अंत में उन्होंने स्वीकार किया, गर्ग स्वीकार किया और वंश परंपरा को भी आगे चलाए, लेकिन महान भक्तों में भी गणना है। तो ये सब बातें जो हैं इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से स्पष्ट हो सकती है। मैं कहता हूं भागवतम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, नहीं तो भागवतम गीता प्रेस ग्रस्त होगा, भागवतम लोग कितना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये श्लोक कितने लोग पढ़े होंगे, लेकिन कितने लोग प्रचार कर रहे हैं इस बात को हम बता रहा है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य पड़ता है। ये तो तात्पर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो महीना है ये स्पेशल महीना है प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करने के लिए, हम लोग पढ़ें और लोगों को बतलाएं। ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है ये एटम बम है, ये बम के समान है, जो वो एक्सप्लोड करेगा तो हमारी सब विषय वासना बम खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करें और लोगों को समझाएं, समझा करके दें। नंबर वन आने के लिए मुफ्त में से बांटो मत, लोगों को समझाओ कि किताब कितना इम्पोर्टेंट है, हैं? और तब लोग लें और पढ़ें, फिर देखिए हमने कितना पावरफुल तात्पर्य है। अभी तो एक घंटा खत्म हो गया, अभी तो हाफ हो गया, आगे बढ़ सकते थे। एनीवे मुझे लाइफ मर्सी मीटिंग है 10 बजे, तो कोई प्रश्न है एनी क्वेश्चन कमेंट एनीथिंग, माइक माइक अरे माइक लाओ बच्चा दो,
हरे कृष्ण नाइस क्लास। प्रभु जी आप बताए कि मुक्त व्यक्ति और जो बद्धा आत्मा है तो उसमें अंतर यह है कि वो अपने को सोचता है कि मैं इस देह में हूं और वो सोचता है मैं देह हूं। गीता में भगवान कहते यह वत सगम जैसा साम्य स्थितम मन निर्दोष ही समंग ब्रह्म तस्मत ब्रह्म स्थित 5.24। तो भगवान कहते कि वो स्थित है, उनका मानसिक स्थिति है और वो उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्या उसको भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है? कभी कभी हम देखते हैं कि ये सब बड़े बड़े भागवतम के विचार आया है जो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन जैसे पहला ध्रुव महाराज उन्होंने विचलित हो गए गंधर्व के साथ लड़ाई की। क्या ऐसे बड़े बड़े भक्तों का मन में कभी कभी साम्यता हो जाता है?
होता है, लेकिन भगवान के संरक्षा में रहते हैं तो भगवान का रक्षा करते हैं। होने के बावजूद भी कभी कभी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ये भगवान को पिकअप कर लेते हैं। भगवान पकड़ते नहीं हैं किसी को, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। कभी कभी भ्रष्ट भी हो जाता है तो उसको उठा लेते हैं। भरत जी को देखिए ना, भरत जी पच्चीत हो गए थे लेकिन भगवान छोड़े नहीं उनको। जिन पर भगवान के भक्तों की कृपा भी हो जाती है, जो कृपा सिद्ध हो जाते हैं, जिनको भक्ति पकड़ लेते हैं, जैसे कुबेर के बेटे नलकुबर और मणिग्रीव, नारद जी पकड़ लिए, उद्धार करना चाहते थे, वो वृक्ष के देह में थे तो भी उनको स्मृति बनी रही। तो जो भगवान के संरक्षता में भगवान का रक्षा करते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए, इसीलिए तो कहा गया है कि जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है इस संसार में, संसार के दुखों से। इसके लिए तो कहते मग्न चित्त, कहते
नैवतरण्य,
हाँ मुझे वैतरणी पार करने का कोई टेंशन नहीं है, मैं तो लगा हूं मगर हाँ मैं आपका हरिनाम कर रहा हूं, आपका कथा कर रहा हूं, सुन रहा हूं, बस उसी में लगा हुआ। तो भक्तों के लिए कोई ये तकलीफ नहीं है, इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा सेफ मार्ग बताया गया है। कहीं कहीं पैर फिसल भी जाए तो भगवान रक्षा करते हैं। और कोई प्रश्न? करभाजन प्रभु बोलिए। करभाजन प्रभु उनके पोते का याद आ गया फटाफट।
अरे
हरि बोल
प्रभु जी, जो आप ये गुरु का उदाहरण दे रहे थे, जो गर्म होने से जो काला निकल जाता है, अनर्थ जो होते हैं, तो जिस तरह से हम लोग जप कर रहे हैं, कई बार हमारे मन से अनर्थ जाते नहीं हैं, तो उसका आप क्या उदाहरण दे सकते हैं?
नहीं जाते हैं तो नाम जप में थोड़ा तकलीफ है, तकलीफ हमारे जपने में है, नाम में तकलीफ नहीं है, नाम तो शुद्ध है। नाम सब प्रकार से शुद्ध है, नित्य शुद्धो पुनः मुक्त भिन्नात्वा नाम नामिना। हमारे जप करने में तकलीफ है तो हम लोग थोड़ा सिंसियर होकर के जप करें, सिंसियर और सीरियस विथ इंटेलिजेंस जप करें, सुने सुनते हुए जप करें, तो जप करेंगे तो शुद्धि प्राप्त होगी। नाम शुद्ध करता है,
होती है, लेकिन जो अनर्थ है वो नहीं निकलते हैं, उसको क्या करना?
अब पता नहीं कितने जन्म का अनर्थ है, एक जन्म का होता हो तो बात करेंगे, जन्म जन्मांतर के अनर्थ है, अनर्थों का परत लगा हुआ है। अब देखिए ना, हम लोग यहां पर हैं, अब किसी के ललाट पर नहीं लिखा हुआ कि इसका पहला जन्म है, उसका दसवां जन्म है, उसका सौवां जन्म है, लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं। देख रहे हैं सब मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें से ऐसे लोग हैं जो पहले बार भी मनुष्य जन्म ग्रहण किए होंगे, वो भी इसमें है, और ऐसे भी जो हैं जो लाखों साल तक 84 लाख जन्म भ्रमण करते 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 यहां तक आए हैं, और ऐसे भी लोग हैं तो कर्म फल का जो एक गठरी है ना, किसी के पास इतना होगा, किसी के पास इतना होगा, किसी के पास इतना होगा, जिसके पास इतना है वो तो जल्दी पार हो जाएगा, जिसके पास इतना पड़ा हुआ है जैसे मेरे पास है तो पार कैसे होगा, बड़ा तकलीफ है। देखने से तो अलग बात है, लेकिन अंदर का बात कुछ और है। हाँ उधर प्रश्न है, समझ गए इस बात को? ये सैद्धांतिक बात है। देखने में सब भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भिन्नता क्या? कर्मफल, सबका अलग अलग कर्मफल है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, संसार और संगत, साधु और संगत, आपने जैसे बताया कि संसार में रहके भी आदमी मुक्त हो सकता है, तो जैसे कमल का फूल पानी में रहके भी पानी उसको असर नहीं करता, तो वैसे संसारी लोग अगर खुद ठीक चले, पर संसार में तो परिवार होता है, कुटुंब होता है, अगर उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो कैसे मुक्ति पाए? या भगवान कभी परीक्षा लेते हैं क्या, जो कैसे मार्ग पे चलना चाहिए? तो उसका उत्तर
ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज नारद जी से किए थे कि हे नारद जी, ये ब्रह्मचारी लोग न आगे नाथ न पाछे पगहा, ये लोग मुक्त आत्मा हैं, ये सन्यासी ब्रह्मचारी को कोई बंधन नहीं है, लेकिन हम गृहस्थी वाले हैं, गृहस्थम एताम पदवी विधिनाम जीन चांजसा, विधिनाम एक नहीं है, अनेक प्रकार का झंझट है गृहस्थी में, तो आपको शॉर्टकट रास्ता बताइए कि हम भी भजन में लगे रहें। ऐसा ही कुछ प्रश्न आपने जैसा किया वैसा ही युधिष्ठिर जी ने किया था। तो नारद जी ने कहा, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रियान कुर्वन यथोचितः वासुदेव अर्पण साक्षात उपासिता महामुनि। कहते हैं घर गृहस्थ जो है, जो गृहस्थ है, क्रिया कुर्वन यथोचितः, यथा उचित क्रिया करो, अनुचित क्रिया मत करो। तो जानना पहले जरूरी है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। पहले पढ़ाई होती थी ब्रह्मचारी का कि गृहस्थ बन गए तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, ये जानने के लिए पहले शिक्षा होती थी। आजकल तो शिक्षा पहले दिन से ही हो रही है, इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जाए, पहले दिन से ही। घर गृहस्थी में गए हैं तो कैसे घर में चलना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसका शिक्षा होता है, ब्रह्मचारी रह करके सीखना चाहिए गुरु आश्रम में जाकर के। तो गृहस्थु अवस्थित राजन क्रिया क्रमण यथोचित, उचित कर्म करें, और उचित कर्म क्या है? वासुदेव अर्पण साक्षात, यह सीखें कि सब कुछ भगवान वासुदेव का है और उनको अर्पण करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी का पानी लेकर गंगा जी का पूजा करते हैं, अपने घर से क्या लेकर के आए, लेकिन उनको गंगा जी के भक्ति का क्रेडिट मिल जाता है, फल मिल जाता है। तो हमारे पास अपना क्या है? ऐसे खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ जो भगवान ने दिया है उनको अर्पण करना। तो वासुदेव अर्पण साक्षात, सब कुछ भगवान वासुदेव को अर्पण कीजिए। और कैसे करें अर्पण? हम तो भगवान को जानते नहीं, देखे नहीं है। तो कहते हैं उपासिता महामुनि, उप मतलब नजदीक में, आसित मतलब बैठ करके, और महामुनि मतलब साधु। साधुओं की संगति में यह सीखिए कि कैसे सब कुछ भगवान वासुदेव को अर्पित किया जाए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऑल राइट, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।